तो आज एकादशी है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रभुपाद लीलामृत से और साथ साथ आज से ही गौर पूर्णिमा फेस्टिवल प्रारंभ की जा रही है, तो आज चैतन्य चरितामृत से चैतन्य महाप्रभु की लीला के ऊपर भी हम लोग आज विचार करेंगे।
मुड़ कहां
है, कहां से पढ़ना है मुझे मालूम भी नहीं, कहां से पढ़ना है कोई जानता है? असीम कहां से पढ़ना है, इसमें एक लगाना चाहिए कुछ इसमें ना। कोई जानता है कहां तक पढ़ा गया है लास्ट टाइम? कुछ भी नहीं, देखिए बताइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग प्रत्येक दिन गाते हैं प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, तो मैं सोचा कि आज प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र पर ही हम बोलेंगे, जिसमें प्रभुपाद जी का लीला भी है और भगवान चैतन्य महाप्रभु का, दोनों का दोहराए। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमोम विष्णुपादाय। असीम रहने दीजिए। कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमोम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सब लोग जानते हैं। तो मैं थोड़ा लीलामृत पढ़ लेता हूं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यह लोअर ईस्ट साइड के आगे ब्रह्मानंद कहते हैं, किंतु हम लोग यह सुनकर सन रह गए कि वे हमें छोड़कर जा रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कृष्ण भावनामृत का प्रसार लोअर ईस्ट साइड के बाहर होगा। न्यूयॉर्क सिटी का तो कहना ही क्या। मैंने सोचा कि कृष्ण भावनामृत यहां आया है और शाश्वत रूप से यहीं रहेगा। हरे कृष्ण लोकप्रिय हो चला था, पार्कों में इसके नियमित कीर्तन होते और समाचार पत्रों में समाचार छपते। हयग्रीव से हरे कृष्ण विस्फोट कहा करता। लोअर ईस्ट साइड के हिप्पी हरे कृष्ण कीर्तन को सबसे गहरे प्रभाव वाली घटना समझते थे। उनके विचार में एलएसडी न लेने से स्वामी जी के भक्तों की लोकप्रियता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं हो रहा था। लोग उन्हें देव दूतों के रूप में स्वीकार करते जो अन्यों तथा शांतिपूर्ण कीर्तन पहुंचाते थे, निशुल्क भोजन तथा रहने का स्थान उपलब्ध कराते थे। उनके स्थान पर समय पर पहुंचने पर अत्यंत रुचिकर शाकाहारी भोजन निःशुल्क मिल सकता था। उनके स्टोर फ्रंट में दरवाजे की बगल में की अलमारी में भारत से प्राप्त पुस्तकें रखी थी। तो ये सब जो बातें हैं शुरू शुरू की बातें हैं और बड़ी ही सुहावनी बातें हैं। ओल्ड इज गोल्ड है, पुरानी स्मृतियां बड़ी ही आनंदवर्धक स्मृतियां होती है। तो यहां पर ब्रह्मानंद पहले बतलाए हैं कि किस प्रकार से जब सुने कि स्वामी जी वहां से जा रहे हैं दूसरे जगह पर, लोअर ईस्ट साइड से बाहर जा रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा धक्का लगा। इस संसार का स्वरूप है कि हम लोग सुखी रहना चाहते हैं, आनंदमय रहना चाहते हैं, आनंद ही आनंद चाहते हैं। तो आनंद में कमी आने लगती है तो थोड़ा ये लगता है। हम लोगों को एक्सपीरियंस है, जन्माष्टमी हुआ, रामनवमी हुआ, तो कैसे हम लोग चार्ज रहते हैं है? जैसे जैसे नजदीक आता है रामनवमी या जन्माष्टमी, सब भक्त लोग चार्ज रहते हैं। और जन्माष्टमी बीत जाने के बाद थोड़ा कुछ लगता है कि अरे खाली हो गया है? चाहे घर में भी कोई फंक्शन है, शादी विवाह है, कुछ है, जब सब सगे संबंधी रिश्तेदार लोग आ रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। जब जाने लगते हैं तो उदास लगता है कि अरे ये कहां चले गए। तो ये मानव प्रवृत्ति है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह कामना करना कि शाश्वत हम कृष्ण भावना का आनंद लेते रहें, बड़ी अच्छी कामना है। तो ब्रह्मानंद की कामना बड़ी अच्छी थी, हम लोगों को भी ऐसे ही कामना रहे कि शाश्वत रूप से हम कृष्ण भावना का आनंद लेते रहें। आगे बताया गया है कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी नियमित रूप से पार्क में भक्तों के साथ कीर्तन करते थे और लोग भी जिनका अपना जो इंस्ट्रूमेंट था लेकर के आते थे और सब नाचते थे और गाते थे। यह अमेरिका न्यूज पेपर वालों को कुछ नया नया चीज चाहिए, उसका नाम है न्यूज पेपर। कुछ न्यूज होना चाहिए, कुछ नया चीज चाहिए, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो वो नहीं देखते हैं, इससे असर क्या पड़ेगा वो नहीं देखते हैं। न्यूज में रहना जरूरी है, नहीं तो उनका पेपर बिकेगा नहीं। तो ये नया चीज था अमेरिका के लिए कि एक इंडियन स्वामी आकर के और नाच रहा है, लोगों को नचा रहा है, गा रहा है, लोगों से गवा रहा है। यहां तक कि हिप्पी लोग जो एलएसडी ड्रग लेकर के आनंद का अनुभव करते थे वे सब छोड़ दिए थे, उसका कोई असर नहीं था उन लोगों पर, छोड़ दिए थे और स्वामी जी के साथ में नाच गा रहे थे। तो एक बहुत अच्छी घटना थी, जिससे कि पेपर वालों को नया मसाला मिल रहा था। प्रभुपाद जी कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका लाखों डॉलर खर्चा किया अपने इस युवक और युवतियों को ड्रग्स से बचाने के लिए, लेकिन नहीं बचा पाए। लेकिन स्वामी जी हरे कृष्ण का कीर्तन कर करके लोगों का रक्षा किए, तो नेचुरली एक बहुत बड़ा न्यूज है। और ऐसे भी न्यूज पेपर वाले गवर्नमेंट को अटैक बहुत जल्दी करना चाहते हैं, तो अटैक करने का भी तरीका था कि स्वामी जी का, ये सब भगवान का कृपा था। भगवान चेतन महाप्रभु, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, भगवान कृष्ण कृपा बरसा रहे थे प्रभुपाद जी के ऊपर ताकि ये प्रचार हो। भले न्यूज पेपर वालों के लिए नया आइटम था, लेकिन इसका प्रचार प्रसार हो रहा था। जितना ज्यादा न्यूज पेपर में प्रचार हो अच्छा होता है। कानपुर में एक नया चीज शुरू हुआ, मैंने सुना कि यहां भी हुआ है, हरेक प्रत्येक रविवार को ये मस्ती मार्ग एक करते हैं, कोई प्रोमिनेंट एरिया के रोड को ब्लॉक कर देते हैं और वहां पर हजारों लाखों के तादाद में लोग आते हैं। सुबह सुबह 6 बजे से 9 बजे ये मस्ती मार्ग चलता है। हम लोगों का अच्छा वहां संबंध है दैनिक जागरण हिंदुस्तान टाइम्स से, तो हिंदुस्तान टाइम के चीफ एडिटर और दैनिक जागरण के मालिक महेंद्र मोहन गुप्ता हमारे कमेटी मेंबर भी हैं, तो वे लोग इस्कान को भी अपने पैनल में रख लिए हैं। और ये जो रोड होता है यहां से लेकर के लास्ट तक, दो स्टेज बनता है, एक इधर बिगिनिंग में और एक लास्ट में, उसमें से एक स्टेज हम लोगों को मिलता है इस्कान को, और एक स्टेज कोई ड्रामा करना चाहे या कोई बैंड वाले हो उन लोगों को मिलता है। अलग अलग एवरी टाइम चेंज होता है, लेकिन एक स्टेज हम लोगों के लिए रिजर्व है। तो प्रत्येक रविवार को हम लोग जाते हैं, करीब करीब दो रविवार को मैं भी गया, तो वहां पर लोग वाइल्ड रहते हैं, लड़के लड़कियां जवान बूढ़े सब आते हैं। बाय द वे वहां पर कोई चीज बेचने को अलाउ नहीं है, तो मस्ती मारे मस्ती कर सकते हो। कोई योग सिखा रहा है, बच्चों के लोग कोई पेंटिंग सिखा रहा है, कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है। और जब भक्त लोग जाते हैं, 50-60 भक्त लोग जब कीर्तन करने जाते हैं, तो एक समा बन जाती है और सब नौजवान भाग कर आते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, हैं? वो लड़कियां भी आकर एक्सरसाइज करती है। तो हमारे एक भक्त है नारद जी, वो भी उनके बीच में चले जाते हैं और वो भी वैसे करना शुरू करते हैं, तो वो लोग और उद्दान करते हैं। फिर कहते नहीं नहीं गाओ भी, तो लोग गाना शुरू करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे राम। जब मैं दो बार देखा इस बात को, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो डिस्के वाले भी फीका पड़ जाते हैं, तो वे लोग भी फोर्सफुली और कुछ नहीं करते हैं, वो डिस्को बजाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम वही गाते हैं, वही लोग नाचेंगे उसी पर, तो डिस्को पर नाचते हैं। इधर करताल मृदंग पर लोग नाचते हैं और उधर डिस्को पर नाचते हैं। तो भले उन लोगों के मन में है मस्ती मार, चलो मस्ती करने जा रहे हैं, लेकिन भक्त लोग जब कीर्तन करते हैं तो सब लोग नाचते हैं और गाते हैं। होली नेम बहुत पावरफुल है, कोई भी गाए, पापी तापी जत छिलो हरि नाम उद्धारी लो, हरि नाम का बहुत प्रभाव है। फिर हम लोग 1 घंटा लेक्चर देते हैं, 2 घंटा कीर्तन करते हैं, तो बहुत अच्छा प्रचार है। और नेक्स्ट डे मंडे फुल पेज आता है, जिसमें से हाईलाइट होता है इस्कान का कीर्तन का एवरी टाइम। इट्स अ गुड प्रीचिंग, भले उन लोगों के लिए मस्ती मार्ग है, मस्ती है, लेकिन चलो चल रहा है। ठीक वैसे ही प्रभुपाद जी हरिनाम बहुत पावरफुल। मैं ब्रजेश प्रभु कह रहा था दूसरे दिन कि हम लोगों को हरिनाम शुरू करना चाहिए। अब केवल यहां पर कुछ लोग जो भी जाते हैं, बस पहले हम लोग हरिनाम करते थे, ये प्रभुपाद जी दिए हैं, मुकुंद माधव प्रभु याद रखो, हरिनाम करना चाहिए। लेट्स गो वन डे एवरी वेडनेसडे हरे कृष्ण लैंड का हरिनाम डे था. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज एक्टिव एज इन मैनेजमेंट बिसाइड पुजारी आशु धन्वंतरी ही टू एस्केप एवरी टाइम इज हियर बट बिसाइड पुजारी एवरीबडी हैड टू बी ऑन हरिनाम नो एस्केप. केवल तीन पुजारी और दो चार कुक ने सब लोगों को हरिनाम चाहे सन्यासी हो ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो स्त्री हो पुरुष हो बच्चे हो सबको हरिनाम जाता विटनेस डे और आते थे और बाद में गरम गरम सांबर राइस और पापड़ मिलता था. दैट वॉज ए फीस्ट फॉर अस सांबर राइस पापड़ हरिनाम का आज भी याद है. पुराने भक्तों से पूछिए निमरका से पूछे बताएगा है निमरका कहता था हरिनाम. हम लोग शुरू करते थे फ्लोरा फाउंटेन से जाते थे भिट्टी कभी कभी चर्च गेट साइड मोस्टली डाउन टाउन कभी कभी कालवा देवी जगन्नाथ संघर्ष सेठ रोड इत्यादि उस एरिया में तो जाना चाहिए हरिनाम करना चाहिए बड़ा अच्छा लगता है. आजकल लोग पूछते हैं अरे हरे कृष्ण वाले कहाँ रहते हैं आजकल तो हरिनाम नहीं करते हैं पहले हरिनाम से लोग पहचानते थे तो हरिनाम होनी चाहिए. हम ये देख सकते हैं यहां पर हरिनाम का प्रभाव कि पेपर में आता था पेपर में आएगा यदि हरिनाम करेंगे तो यहां पर पढ़े कि हयग्रीव कि ये भक्त लोग देवदूत के समान थे जब नाचते थे गाते थे. प्रभुपाद जी कहते भी थे कि दे लुक लाइक वैकुंठ मैन सेव्ड हेड तिलक कंठी लाल कपड़ा वैकुंठ मैन तो देवदूत के समान लगते थे. और स्टोर फ्रंट में जहां छोटा मंदिर था आज भी वह स्थान है मैचलेव गिफ्ट न्यूयॉर्क में डाउनटाउन में वहां पर प्रभुपाद जी प्रसाद खिला करके जिह्वा जो है बहुत पावरफुल है यदि जिह्वा बस में हो जाए तो हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं यदि जिह्वा बस में न हो तो कृष्ण को प्राप्त करना मुश्किल है. जिह्वा रेला लोच बस इति उति धाय शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए. जिह्वा का डायरेक्ट कनेक्शन है पेट से और जड़ेन्द्रिय से सेक्स डिजायर से यदि जिह्वा बस में हो जाए तो और सब कुछ बस में हो सकता है. तो प्रभुपाद जी प्रसाद खिला करके जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्रभुपाद जी प्रसाद खिला करके यहां पर लिखा हुआ है उनके स्थान पर समय पर पहुंचने पर अत्यंत रुचिकर शाकाहारी भोजन निःशुल्क मिल सकता था. बेचारे बटर ब्रेड खा करके दिमाग लोग खराब हो गया था कितना ब्रेड खाएंगे इंडिया में कितनी वैरायटी है कितने प्रकार का राइस है कितने प्रकार की सब्जियां हैं. और प्रभुपाद जी बड़े एक्सपर्ट कुक थे और ओवर एंड अबव ये कृष्ण का प्रसाद था तो स्वाभाविक था कि रुचिकर था शुद्ध भक्त के द्वारा बनाया हुआ था तो इसका बहुत फायदा हो रहा था. साथ साथ प्रभुपाद जी वहां पर एक छोटा लाइब्रेरी भी शुरू कर दिए थे यहां पर एक ग्रंथ जो लेकर गए थे अनुवाद किए थे वो था वो पढ़ते थे भक्त लोग. तो आई थिंक यहीं पर मैं इसको छोड़ देता हूं अब हम लोग आगे चलते हैं. नमो नमस्कार करते हैं या प्रणाम ओम ओम विष्णु पादाय विष्णु के चरण कमलों में अनवरत स्थित कृष्ण प्रेष्ठाय कृष्ण के प्रिय भूतले इस धरातल पर श्रीमते सब प्रकार से संपन्न सुंदर ज्ञान इत्यादि से परिपूर्ण भक्ति वेदांत भक्ति वेदांत स्वामी स्वामी इति इस प्रकार से नामिने उनका ऐसा नाम है नमस्ते, आपको प्रणाम है। सारस्वती देवे, मतलब उच्चारण करने में गलती कर देते हैं। याद रखना, संस्कृत एक ऐसी भाषा है, उच्चारण ठीक से नहीं गए उसका परिणाम उल्टा हो जाता है। प्रायः कहते हैं नमस्ते सरस्वती देवी, सरस्वती नहीं है, सारस्वती। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के देवे, सरस्वती देव के प्रिय हैं या उनके हैं, कृष्ण और कृष्णा, कृष्ण मतलब कृष्ण और कृष्ण मतलब कृष्णा, मतलब कृष्ण का। तो सारस्वते वसुदेव और वासुदेव, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जो शिष्य हैं वे सारस्वते हैं। गौरवाणी, गौरवाणी का चैतन्य महाप्रभु के आदेश का प्रचारिणे, प्रचार किए, निर्विशेष निराकारवादियों के बीच में, शून्यवादी जो भगवान के विषय में बिल्कुल नहीं जानते हैं, भगवान के विषय में जीरो ज्ञान है, उन लोगों को पाश्चात्य पश्चिमी देश जगत को तारिणे निस्तारित किए। तो यह प्रार्थना है प्रभुपाद जी के लिए कि वे नित्य निरंतर, उनका मन कृष्ण के चरणों में लगा रहता है। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, कृष्ण के बड़े प्रिय हैं संसार में, उनका नाम है भक्ति वेदांत। वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के प्रिय शिष्य हैं। वे गौरवाणी चेतन महाप्रभु के आदेशों का प्रचार करने के लिए वे पाश्चात जगत में गए, जो पाश्चात जगत निराकार और शून्यवाद से भरा पड़ा था। पाश्चात जगत, मैं दूसरे दिन लेक्चर सुन रहा था, अमेरिका को किसने फाउंड किया? हु फाउंडेड अमेरिका? कोलंबस। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि कोलंबस निकला था इंडिया का पता लगाने के लिए, लेकिन ईस्ट जाने के बजाय वो वेस्ट चला गया, तो अमेरिका को प्राप्त किया। फाउंड अमेरिका। तो पाश्चात्य देश का मतलब अमेरिका से है, ये बात समझना चाहिए यहां पर। चलिए, इसमें तीन बातें हैं जिन पर मैं विचार करूंगा, हम लोग विचार करेंगे। एक है निर्विशेष शून्यवादी, और दूसरा है गौरवाणी प्रचारिणी। तो चूंकि गौरवाणी प्रचारिणे आज से इस्कान के सब केंद्रों में गौरवाणी के विषय में ज्यादा बात किया जाता है, भगवान चेतन महाप्रभु के विषय में कथाएं होती है सब जगह, यहां भी प्रारंभ किया जा रहा है। उतराएं नहीं, जय श्री श्रीताय गौर सुंदर की जय, शारदास बिहारी की जय। उतना ही नहीं बल्कि होली भी प्रारंभ हो गया, राइट? लठमार होली बरसाने में शुरू हो गया, लोग जाना शुरू कर दिए। तो गौरवाणी प्रचारिणे, भगवान चैतन्य महाप्रभु के उपदेश हैं अलग अलग, और उनका इंस्ट्रक्शन जो है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन सबके लिए है। आप लोग बता सकते हो क्या इंस्ट्रक्शन है सबके लिए स्पेसिफिक? और श्लोक क्या है? हैं? जारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश अमार आज्ञा गुरु हैया तारा ही देश। ये महाप्रभु स्टैंडिंग ऑर्डर सबको दिए हैं, उपदेश दो लोगों को। अन्यत्र कहे हैं पृथ्वी ते आछे जप नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हय मोर नाम। पृथ्वी पर जितने भी शहर और गांव हैं सब जगह कृष्ण भक्ति का प्रचार होना चाहिए। आजकल हम लोग ज्यादा शहरों में प्रचार करने में लगे हुए हैं, लेकिन महाप्रभु चाहते हैं कि गांव में प्रचार हो। शहर और गांव कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखना चाहिए, प्रचार सब जगह कर, नाम हट का प्रचार गांव गांव में होना चाहिए। प्रभुपाद जी भगवान चैतन्य महाप्रभु के इस आदेश को अपने हृदय में लिए और जब अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी से प्रथम बार मिले तो उनके गुरु महाराज भी यही आदेश दिए कि तुम अंग्रेजी पढ़े लिखे हो, तुम जाओ पश्चात जगत में प्रचार करो। प्रभुपाद जी एक अंतिम पत्र लिखे थे अपने गुरु महाराज को और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी इस धराधाम को छोड़ने से पहले उस पत्र का रिप्लाई किए थे और उस पत्र में उन्होंने वही बात लिखा था कि तुम जाओ और पास। उन्होंने लिखा था कि आपके सन्यासी ब्रह्मचारी शिष्य तो बहुत सेवा करते हैं, मैं तो गृहस्थ हूं, मैं आपका सेवा कैसे कर सकता हूं। तो उसके जवाब में उन्होंने लिखा था कि तुम जाओ और पश्चात जगत में इसका प्रचार करो। जो बात वे पहली बार मिले थे कहे थे वही बात वे पुनः 11 साल के बाद भी करीब लगभग वही बात लिखे। ठीक वैसे ही प्रभुपाद जी जब कानपुर मंदिर हम लोग बनाने गए तो हम देख रहे थे 3 लेटर ऐसे हैं, 17 लेटर प्रभुपाद लिखे हैं कानपुर के समय में, इसमें 3 लेटर ऐसे हैं। एक लेटर उन्होंने 1969 में लिखा था कि वी शुड सर्टेनली हैव ए सेंटर इन कानपुर, ए थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी आफ्टर कलकत्ता एंड बॉम्बे, 69 में। और 1976 में पुनः वैसा ही लेटर लिखे और उसमें भी लिखे वी शुड सर्टेनली हैव ए सेंटर इन कानपुर, ए थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी इंडिया आफ्टर बॉम्बे एंड कलकत्ता। तो अंतर कितना ही हुआ कि पहले लेटर लिखे आफ्टर कलकत्ता एंड बॉम्बे और दूसरे लेटर लिखे आफ्टर बॉम्बे एंड कलकत्ता। सो यू कैन सी भक्ति सिद्धांत जी के मन में जो था प्रभुपाद जी के मन में 10 साल 1969 और 76 कितना दिन हो गया, 7 साल 8 साल। प्रभुपाद जी उनके मनस पटल पर था कानपुर में एक मंदिर होना चाहिए। ठीक वैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी चाहते थे कि पश्चात जगत में प्रचार हो और इसलिए जो भगवान चैतन्य महाप्रभु का आदेश था वही आदेश हृदयान ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने प्रभुपाद जी को दिया और वही आदेश प्रभुपाद जी हम लोगों को दिए हैं। ये कहलाता है शिष्य परंपरा और डिसिप्लिन सक्सेशन। हम लोगों को ऑथराइज होना बहुत जरूरी है। यदि ऑथराइज होकर के प्रचार करेंगे तो हमारे प्रचार में शक्ति मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु जनरल ऑथराइजेशन दे दिए हैं सभी के लिए कि पृथ्वी तथा हयात नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी स्पेसिफिकली प्रभुपाद जी को ऑथराइज किए कि तुम पाश्चात्य जगत में जाओ और प्रचार करो। तो ऑथराइजेशन बहुत जरूरी है। जब ऑथराइजेशन होगा, जब हम ऑथराइज होंगे तो हमारा जो वर्ड होगा वह ऑथोरिटेटिव होगा। यदि हम ऑथराइज नहीं हैं तो हमारा वर्ड ऑथोरिटेटिव नहीं होगा और चूंकि ऑथोरिटेटिव नहीं होगा इसलिए उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा जितना कि ऑथराइज होने से।
पहले हम लोगों को ये बात बतलाई जाती थी और हम लोग वैसा करते थे। जैसे हमको यदि वृंदावन जाना है तो पहले हम जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के पास और रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रभु महाराज हम वृंदावन जाना चाहते हैं। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो भी थे वे लोग देखते थे कि सेवा क्या है, भक्त का कितना अच्छा सेवा किया, क्या किया है, तब परमिशन देते थे, ठीक है तुम वृंदावन जा सकते हो। एक आलाता है ऑथराइजेशन प्रोसेस। पता है आजकल क्या करते हैं भक्त लोग, टिकट निकाल लेते हैं पहले ही, कहते हैं प्रभु जी मेरा टिकट हो गया है वृंदावन जाने का, मैं इस दिन जा रहा हूं। आजकल इन्फॉर्म करते हैं, पहले परमिशन मांगते थे, आजकल इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो ये ऑथराइजेशन नहीं हुआ। हम लोगों को ऑथराइज होना जरूरी है, परमिशन प्राप्त करना जरूरी है। फिर भक्त लोग एक नया बना दिए, इजियर टू बी एक्सक्यूज देन गेटिंग अप्रूवल। परमिशन मांगने से परमिशन नहीं मिल रहा था, लेकिन गलती करते लोग क्षमा करते हैं, विष्णु दयालु होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग को ऑथराइज होना चाहिए और प्रभुपाद ऑथराइज थे, इसलिए जा करके उन लोगों को प्रचार किए। किन लोगों को? निर्विशेष निराकारवादियों को और शून्यवादी जो कि भगवान के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं। कई एक प्रकार, दो प्रकार के मुस्लिम निर्विशेषवादी होते हैं, निराकारवादी होते हैं। एक तो कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, वो भी निर्विशेषवादी है। और एक वे होते हैं जो कहते हैं कि हम भगवान से निकले हैं, भगवान के ही अंश हैं, इसलिए हम भी भगवान हैं, नमो नारायण, तब नारायण है। और शून्यवादी यानी एथिस्ट, मायावादी और एथिस्ट, ईस्टर्न फिलोसफी में इन लोगों का ट्रांसलेशन नहीं होगा, एथिस्ट और इम्प्रेशनलिस्ट, लेकिन वेस्टर्न पाश्चात्य जगत में इनका अर्थ निर्विशेष शून्यवादी, पाश्चात्य देश तारने। पाश्चात का दूसरा अर्थ यह भी हुआ जो गए गुजरे लोग हैं। पाश्चात मतलब जो गए गुजरे, सूरज उगते हैं, उगते सूरज का सब पूजा करते हैं, डूबते सूरज को पूजा करता है, है? वो गया गुजरा है, गया काम से, पाश्चात डूब गया है? तो पाश्चात देश का मतलब डूबा हुआ देश, गया हुआ देश। उस देश में जाकर के प्रभुपाद जी प्रचार किए। गौरवाणी पर मैं बात करने का सोचा था, जैसे मैं कहा कि भगवान चेतन महाप्रभु इंस्ट्रक्शन दे दिए थे सभी लोगों को कि जाकर के तुम प्रचार करो, सामान्य लोगों को दिए थे, विशेष लोगों को भी दिए थे, अपने अंतरंग में से एक थे नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु और कोई नहीं है, भगवान चेतन महाप्रभु के ही दूसरे स्वरूप हैं। ब्रजेंद्र नंदन जयी सची सुत हईल से बलराम हईल निताय। बलराम जी साक्षात नित्यानंद प्रभु हैं। नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को जो साक्षात ब्रह्मा हैं, क्रिएशन करने वाले, उन दोनों को चैतन्य महाप्रभु स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, और क्या है आगे भूल गया, किसी को याद नहीं है, पढ़ते नहीं हो गया, मैं तो बुढ़ा हो गया भूल गया, तुम जवान लोग बताओ, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, घरे घरे, एनीवे हे नित्यानंद हे हरिदास सुनो, हाँ बोलो क्या है आगे का प्यार, क्या है सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, हाँ हाँ परमार दे बोलो, हाँ अमार आज्ञा है सर्वत्र कर प्रचार। हाँ उन्होंने नित्यानंद प्रभु को और हरिदास को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया, तुम जाओ। अन्यत्र उन्हें कहा कि तुम घर घर में जाकर के प्रचार करो। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के इसी आदेश के अनुसार हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु प्रचार करने नदिया में निकले। चैतन्य भागवत के मध्य लीला में जगाई मधाई के उद्धार का लीला आया हुआ है, आठवें अध्याय में ये वर्णन है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात ब्रजनंदन श्याम सुंदर हैं, वे ही इस कलिकाल में तीन दो एक रूप हुए। राधा और कृष्ण दोनों एक हुए, लेकिन स्वरूप धारण किए एक भक्त का। तो तीनों शक्तियां, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था, आह्लादनी, संबित, संगीत और आह्लादनी, तीनों शक्तियां एक साथ प्रथम बार आई है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में। आह्लादनी शक्ति जो है वो है श्रीमती राधा रानी, संगीत शक्ति है वो है बलराम जी या सेवक, सेवा करने का भाव, और संगीत शक्ति स्वयं श्री कृष्ण है। वे तीनों एक साथ आए हैं भक्त के रूप में। जैसा कि श्रीमद् भागवत महापुराण अनेक शास्त्रों में इसका वर्णन किया है चैतन्य महाप्रभु के विषय में, लेकिन भागवत के 11वें स्कंद की 5वें अध्याय में इसका वर्णन किया श्लोक 35 में। कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण सांगो पांगा सपार्षद जगई संकीर्तन प्रायई जयंती ही सुमीरसा। कृष्ण वर्ण, एक कृष्ण के जात वाले हैं। कृष्ण किस जाति के हैं? हैं? जादव ही बोलते हैं। ईपी से हो क्या? हाँ लगता है ईपी वाले, बिहार वाले ज्यादा जादव जी बोलते हैं। कृष्ण वर्ण, वो जादव परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन उनका वर्ण वो नहीं है, उनका जाति वो नहीं है। तत्व से समझो, वे भगवान हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान है। कृष्ण वर्ण, या दूसरा अर्थ है कृष्ण वर्णेति कृष्ण वर्ण, जो कृष्ण का ही हमेशा गुणगान करते हो, जो कृष्ण कृष्ण ही कहते हो, वो कृष्ण वर्ण है। या तीसरा अर्थ है जो काले, जो कृष्ण है, कृष्ण अवर्ण, जो काले नहीं है। कैसे है? तुषा कृष्ण, ये तिषा है, गोरे हैं, अकृष्ण, कृष्ण ही है लेकिन कृष्ण का रंग उनमें नहीं है। कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण। सांगो पांगा सपार्षद, वे अकेले नहीं आएंगे, सांगो पांगा यानी सगे संबंधियों के साथ में आएंगे, अपने साथियों के साथ में आएंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदी गौर भक्त बिंद, ये है सांगो पांगा सपार्षद। और करेंगे क्या? यज्ञ करेंगे। यज्ञ कौन यज्ञ करेंगे? संकीर्तना, संकीर्तन यज्ञ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो यज्ञ संकीर्तना प्रायई, सब लोग नहीं समझ पाएंगे। जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेस्तु कश्चिदति सिद्धये यत्तापि सिद्धानाम कश्चिन माम वेद तत्वतः। हजार हजार मनुष्यों में से कोई प्रयास करता है भक्ति करने का, और उन सिद्ध प्राप्त में से कोई भगवान कहते मैं जानता है, वैसे ही सब लोग नहीं इस यज्ञ को स्वीकार करेंगे। कौन स्वीकार करेगा? प्रायः सुमेधसा, जो सुमेधा है। मेधा मतलब ब्रेन सब्सटेंस, और सुमेधा मतलब फर्स्ट क्लास फर्टाइल ब्रेन जिसका है, वही लोग इस बात को समझेंगे। तो वे हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए वे भक्त के रूप में आए। पागल को समझाना है तो पागल बन जाओ, तब पागल समझेगा। विद्वान को समझाना है तो विद्वान बनकर के समझाओ। वैसे ही अबोध अज्ञानी को समझाना है, यदि भक्ति का ज्ञान देना है तो भक्त होना बहुत जरूरी है। यदि आचरति श्रेष्ठा तत्त एव इतरतो जनः। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान जब भी आते हैं जो प्रयोजन होता है उसके अनुसार अवतार ग्रहण करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भगवान वामन का रूप धारण किए, इधर बलि शुक्राचार्य के कृपा से बहुत पराक्रमी हो गए थे, कश्यप और अदिति, सॉरी अदिति और कश्यप तपस्या बहुत किए, भगवान को अपने पुत्र के रूप में मांगे। अदिति ने कहा कि हमारे पुत्र आज जो इंद्र के स्वर्ग के राजा थे आज दर्दर का ठोकर खा रहे हैं, भिकमंगे हो गए हैं, हमारे पुत्रों को इनका खोया हुआ राज दिला दीजिए। और राज दिलाने के भगवान क्या बनकर कहा गए, वामन का रूप। तो कोई कह सकता अरे ये छोटा बच्चा कैसे राज दिलाएगा, ना हाथ में तलवार है ना धनुष है, उधर राम जी आए थे धनुष लेकर के, ये कैसे दिलाएगा। लेकिन भगवान जानते हैं कौन प्रयोजन किस रूप से सिद्ध होगा। वो जानते थे कि बलि पर श्राप था, ब्राह्म लोहा लोहा को काटता है, तो जब तक से ब्राह्मण का तिरस्कार न करे बलि तब तक से कोई प्रार्थना नहीं कर सकता है। और वही हुआ, शुक्राचार्य का वो तिरस्कृत किए, शुक्राचार्य को अपमानित किए, अपराध किए और शुक्राचार्य का श्राप हुआ। तो कैसे हुआ, ब्राह्मण होने के चलते। तो भगवान जानते हैं कब कैसा रूप लेना चाहिए। तो कलयुग के प्राणियों का निस्तार करने के लिए भगवान आए एक भक्त के रूप में। भक्त्यावतारम भक्त्याकम नमामि भक्त सत्तिकम। भक्त्यावतारम भगवान के रूप में, भगवान भक्त के रूप में आए हुए हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु नवदीप में रह करके विभिन्न प्रकार का लीला करते थे। तो एक दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और हरिदास को बुला करके और इस प्रकार से कहे। और भगवान चैतन्य महाप्रभु कहना था इन भक्तों के लिए, भगवान के मुख से निकला हुआ वाणी जो था वो सब कुछ था। तो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद बिना रोक टोक के घर घर जाकर के दरवाजा खटखटाने लगे, कहो कृष्ण बोलो कृष्ण, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण बोलो, दे दिया यही भिक्षा हमको। ये कहते हैं हां बोला कृष्ण कह कृष्ण भज कृष्ण कह यही शिक्षा कर कृष्ण शिक्षा और भूल गया भजन है ना कृष्ण बोलो हां यही मात्र दिए छे घरे घरे शिक्षा। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु घर घर जाकर के इस शिक्षा देते थे। तो आप घर घर जाओगे तो स्वाभाविक है कुछ लोग अप्रिशिएट करेंगे, कुछ लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे। कुछ लोग तो उनको सम्मान करते थे, उनको काजू किशमिश बादाम भी खिलाते थे। मेंबरशिप रिचल जाते हैं ना तो लोग फर्स्ट क्लास का प्रसाद खिलाते हैं लोग, और कुछ लोग कहते हैं महाराज टाइम नहीं जाओ। तो वैसे ही कुछ लोग हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु का सम्मान खूब करते थे, उनका पूजा करते थे, खिलाते थे, पिलाते थे और भगवान का नाम लेते थे, हैप्पली रिसीव करते थे जो पायस लोग थे। और जो इम्पायस लोग थे, अरे क्या हरिकृष्ण वाले हरिकृष्ण क्या खर्च से फायदा होगा जाओ, ब्लास्फेम भी करते थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को कोई प्रभाव नहीं पड़ता था इससे, चाहे कोई काजू किशमिश बादाम खिलाए चाहे डंडा मार के घर से बाहर निकाल दे, कोई असर जगाली दे, कोई असर नहीं, क्योंकि उनका तो काम था प्रचार करना। तो प्रचार करने में हम लोगों को कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, चाहे वो बुक डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे लाइफ मर्सी प्रीचर हो, चाहे कांग्रेगेशन प्रीचिंग वाला हो, कोई प्रचारक हो, हतोत्साहित कभी नहीं होना चाहिए। प्रचार में कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, कभी मान मिलेगा, कभी अपमान मिलेगा। जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं, मात्रा स्पर्श कौंतेय सुदुष्णा सुख दुखदा आगमा अपायनो नित्यं तात तिच्छस्व भारत। सिंपली सहन करो ये मान अपमान, दी ऑल कमिंग फ्रॉम सेंस परसेप्शन, ऑनर डिसऑनर, हैप्पीनेस डिस्ट्रेस। अभी देखो ना, ये एक महीना में तीन सीजन हमने देख लिया, जाड़ा गर्मी बरसात है? तो आता रहता, क्या करेंगे, चलता है, चलना पड़ता है। तो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद को कोई से असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वे लोग सब जगह जाकर के और हरि नाम का प्रचार करते थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम। तो एक समय की बात है, उस नदिया में, नवदीप में, नवदीप मंडल में दो भाई थे, उनका नाम था जगाई और मधाई। ये लोग ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन कुसंग के चलते वे लोग सब पाप कर चुके थे। कोई ऐसा पाप नहीं था जो कि जगाई मधाई नहीं किए थे, चाहे स्त्रियों को रेप करना, चाहे मांस खाना, चाहे दूसरों का धन लूटना, चोरी करना, गाली गलौज करना, मारपीट करना, यहां तक कि ब्राह्मणों और गौओं का भी हत्या करते थे। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर ब्राह्मण होकर के सब पाप करते थे, कंस के बाप हो गए थे लोग। गांव वाले थरथरा रहे थे, उनके आगे पीछे नहीं जाते थे। नित्यानंद हरिदास जब जा रहे थे, हालांकि सब लोगों ने कहा कि भाई देखो सब जगह जाना, लेकिन वो दो भाइयों से कसाई हैं, उनसे बच कर आना, तुम लोग उनके पास मत जाना बोल करके भी। तो नित्यानंद प्रभु मन में ठान लिए, मैं चलूंगा ही, मैं उसके पास चलूंगा, उनके पास चेतन महाप्रभु का कृपा था, चलूंगा, हम चलेंगे। तो एक दिन ये लोग जा रहे थे रास्ते में, तो देखे कि जगाई और मधाई खूब गाली गलौज कर रहे हैं, खूब झगड़ा करते हैं, और फिर बाद में दूसरों का आलिंगन करते हैं। पागल लोग ऐसे ही होते हैं, झगड़ा करेंगे फिर मिल जाएंगे। तो झगड़ा कर रहे थे और आलिंगन कर रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु, हाँ हरिदास देखो यही दोनों भाई हैं, इन्हीं लोगों का लोग बात कर, चलो मिलते हैं इन लोगों से। हरिदास थोड़ा डर रहे थे कि सब लोग इतना उनका गुणगान कर दिए थे कि थोड़ा हरिदास डर रहे थे, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु के सामने सबको आज्ञा मानना ही पड़ेगा, डंडा मार देंगे वो तुरंत। तो हरिदास डरते रहते बेचारे, चले गए, थोड़ा दुर्नीत थे। लेकिन अब नित्यानंद प्रभु हरिदास जाकर के उन लोग समझाने, भाई तुम झगड़ा मत करो, क्यों झगड़ा करते हो, तुम लोग ब्राह्मण परिवार से जन्म लिए हो, तुम्हारा कुंडली हमारे पास पूरा है, हम पूरा सुन लिए हैं तुम लोगों के विषय में, तुम लोग ब्राह्मण परिवार से जन्म लिए हो, ब्राह्मण का नाम बदनाम क्यों कर रहे हो, तुम लोग भगवान का भजन करो, भगवान का नाम लो। और ये लोगों को आनंद आ रहा था झगड़ा करने में, और ये लोग झगड़ा में ये लोग बाधा फैला रहे थे। तो मधाई को आया गुस्सा, का बदमाश कहीं का, भगवान का नाम लेने के लिए बोल रहा है, वो शराब का, आजकल तो शराब बड़ा स्पेशल आता है ना, और बोतल में आता है, आजकल पाउच में भी आता है, पहले हंडी में आता था मिट्टी के बर्तन में। तो शराब का वो हंडी था, उठाया दे मारा नित्यानंद को, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, सेकेंड टाइम हुआ, पहले तो जब समझा रहे थे उसको, तो जगाई मंगाई दोनों उठ गए, बदमाश कहीं कहता हूं, समझा रहा है, पकड़ो, गाली गलौज करना शुरू किए, ये चले दोनों भाग वहां से, हरिदास और नित्यानंद, और वे लोग इनका पीछा किए, भागते 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 जा रहे थे। हरिदास कहते नित्यानंद, तुम बदमाश है, तुम्हारे चलते आज हम खतरा में पड़ गए, गांव वाले सब मना किए थे लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं है, देखा क्या परिणाम हुआ। फिर पीछे देख रहे हैं, उधर दौड़ते आ रहे हैं जगाई मधाई, ये लोग भाग रहे हैं, हाँफ रहे हैं, भागते 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 अद्वैताचार्य के घर में घुस गए हरिदास ठाकुर और नित्यानंद दोनों घुट गए। अब बेचारे हाँफ रहे थे नित्यानंद, अब वहां पर अद्वैताचार्य लोग पानी में पिलाए बैठा है, कह क्या बात है, अब मत पूछो। अद्वैताचार्य तो बहुत श्रेष्ठ थे, सीनियर थे, सब लोग सम्मान करते थे, स्वाभाविक है बच्चे लोग बाप मां के पास जाकर के शिकायत करते हैं। और हरिदास अब शिकायत करना शुरू किया नित्यानंद प्रभु का, कहे एक पागल आदमी है ये, महाप्रभु ने कह दिया इसके साथ में प्रचार करने जाने के लिए, अरे आप नहीं जानते हो ये क्या कर करता है, कभी कभी ये गंगा में कूद जाता है और मगरों के साथ में तैरने लगता है और कहता हरिदास तुम देखो कौन आगे जाता है, ये मगर के साथ में तैरने लगता है। वो नवज्योतियां जब पानी आती है तो उसे छिड़खानी करता है और स्वयं भाग जाता है और सब मुझे सिर पर ढोना पड़ता है, लोग गाली गलौज करते हैं तो मुझे सुनना पड़ता है, कभी कभी किसी घर में जाकर के मक्खन चोरी करता है। तो जैसा कृष्ण करते थे प्राय सब वही नित्यानंद प्रभु भी कर रहे थे। और कहा और तो और गांव वालों ने सब मना किया लेकिन ये काहे को मानने जाए, ये दो पागल लोग थे और उनके साथ में ये भी चले गए, अरे अच्छा हुआ आपका घर में दिख मिल गया, हम लोग बच गए, नहीं था हमारा कचमर निकल गया होता आज, हम गए थे काम से। तब अद्वैत प्रभु बड़े हंसे जोर से और कहे कि ये तीनों पागल एक साथ रहेंगे तो अच्छा ही होगा, कहे तीनों पागल यानी जगाई और मधाई दो शराब पीकर के मदमत हैं और नित्यानंद प्रभु गौर प्रेम में कृष्ण प्रेम में मनमत हैं, तो कहा तीनों पागल साथ में रहे तो अच्छा ही होगा। इस प्रकार से उस दिन तो बच गए लेकिन जगाई मधाई डसे हुए सांप पर कोई पैर डाल दिया हो, सॉरी विषैले सांप पर कोई पैर डाल दे, कितना फनफनाता है, खोजता रहता है किसने पैर डाला, ठीक वैसे ही जगाई मधाई नित्यानंद प्रभु को और हरिदास को खोज रहे थे कि कहां मिलेंगे। नवदीप से वे आ गए और जहां चैतन्य महाप्रभु स्नान करने जाते थे जिस घाट पर, अब वहां आकर के रहने लगे। कोई बता दिया होगा किधर जाते होंगे नहाने के लिए, कि कभी तो आएगा नहाने के लिए लोग, वहीं रहने लगे और वहां रहकर के विभिन्न प्रकार का उपद्रव करने लगे, जो भी स्नान करने आता था उन लोगों को परेशान करना इत्यादि इत्यादि ये सब काम करते थे। प्रत्येक दिन श्रीवास आंगन में उद्यान नाम संकीर्तन होता था रात को, तो ये लोग रात को शराब पी पी करके मत थे, जब वहां नाम कीर्तन होता था तो ये भी नाचते थे और ये भी गाते थे, पागल थे ना, उधर नित्यानंद प्रभु पागल, इधर ये लोग पागल, सब पागल गा रहे हैं, डेली गा रहे थे, नाचते थे गाते थे, तो कुछ तो सुधि हुआ है धीरे धीरे। एक दिन की बात है, नित्यानंद प्रभु और हरिदास प्रचार करके आ रहे थे, थोड़ा शाम हो गया था, अंधेरा जैसा हो गया था और ये लोग मदमत थे तो जोर से गाते हुए आ रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो जगाई मधाई सुन लिए, पहले से दूर से आता था, नजदीक से आ रहा है तो देखे यही लोग हैं, रात को हमको सुन नहीं थे, देखते कौन है लोग, नजदीक आए तो मधाई देखा तो नित्यानंद प्रभु दिखाई पड़ गए, कहा यही बदमाश है, यही है उस दिन परेशान किया था, उठाया हाथ में ही था उसका मटका, दे मारा नित्यानंद प्रभु, मार दिया सिर फूट गया। अब हरिदास चले भाग वहां से, और लोग थे वहां पर, सबने देखा, संध्या समय हो गया था लेकिन सबने देखा, तो बड़ा गड़बड़ हो गया, सिर से खून आने लगा, यह अन्यूज भगवान चेतन महाप्रभु को मिल गया, नित्यानंद प्रभु का सिर फूटा हुआ है, फिर भी कहते हैं भाई जगाई भाई मधाई हरे कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। जगाई जब यह देखा किसका सिर फूटा हुआ है और फिर भी हरि नाम ले रहा है, उसका हृदय द्रवित हो गया और होगा भी क्यों नहीं, नित्यानंद प्रभु स्वयं साक्षात बलराम है, उनके मुखारबिंद से सुन रहा था। उसका हृदय द्रवित हो गया, कहा कि भाई, मधाई से कहा कि अरे ठाकुर देखो भाई, देखो ये ठाकुर का सिर फूटा है, खून निकल रहा है, फिर भी हरिनाम ले रहा है। बात हो ही रही थी, मधाई का दो और देने वाला था, तो चेतन महाप्रभु आ गए। चेतन महाप्रभु आ गए और सुदर्शन को आमंत्रित किए। भगवान नित्यानंद प्रभु चेतन महाप्रभु से हाथ जोड़कर विनती किए कि नहीं, कलयुग में सब मरे हुए हैं, आप तो आए हैं सबका उद्धार करने के लिए, आपको मारने के लिए नहीं आए हैं, सबको बचाने के लिए आए हैं, मरे को प्राण देने के लिए आप आए प्रभु। सुदर्शन चक्र से इन लोगों का उद्धार नहीं होगा, हरिनाम से उद्धार होगा। फिर पूरा कहानी जब महाप्रभु सुने और सुने किस प्रकार से जगाई ने चैतन्य नित्यानंद प्रभु का रक्षा किया एक तरह से, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जगाई को कृष्ण प्रेम दे दिए तुरंत। लेकिन मधाई को कहे तुम्हें मैं कभी यह प्रेम नहीं दूंगा। बाय दैट टाइम दोनों का हृदय द्रवित हो गया था। मधाई तुरंत जाकर के नित्यानंद प्रभु का चरण पकड़ लिया और नित्यानंद प्रभु कहे कि क्षमा कर दीजिए इसको। जिस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने माता सची देवी को भी एक बार सची माता ने अद्वैताचार्य के चरणों में अपराध किया था, भगवान चैतन्य महाप्रभु से मांग रही थी कृष्ण भक्ति रस प्रेम, लेकिन महाप्रभु ना सीधे बोले अपने मां को भी। लेकिन जब वही माता अद्वैताचार्य से प्रार्थना की तो अद्वैताचार्य के प्रार्थना पर महाप्रभु अपने मां को भी कृष्ण प्रेम दिए। ठीक वैसे ही जो मधाई नित्यानंद प्रभु के चरणों में अपराध किया था, जब नित्यानंद प्रभु ने प्रार्थना किया तब उस मधाई को कृष्ण प्रेम मिला। उसके बावजूद भी वो रिपेंट कर रहा था। प्रत्येक दिन ये जगाई और मधाई 200,000 नाम जप करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और वहां पर गंगा किनारे गंगा का सफाई करते थे, जो भी स्नान करने आते थे उनका सेवा करते थे, तो पिलग्रिम या वैष्णव का सेवा और हरिनाम दो करते थे। इसके बावजूद भी मधाई बहुत रिपेंट करता था, रोता था हमेशा, जगाई से रहा नहीं गया। एक दिन जगाई अपने भाई मधाई के साथ में नित्यानंद प्रभु के चरणों में गए और कहे कि प्रभु, मधाई का दिल अभी तप्त है, ये जल रहा है, प्रत्येक दिन रो रहा है, ये कैसा परिस्थिति था। दोनों भाई रोते थे हरिनाम लेकर के, लेकिन मधाई रोता था रिपेंटेशन में। तो महाप्रभु के पास यह बात आई, महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और महाप्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारा सब अपराध क्षमा कर दिया हूं, तूने अब कोई अपराध नहीं किया है। तो नित्यानंद प्रभु कहा कि हम सब अपराध क्षमा कर दिए हैं। महाप्रभु के पास आए, महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और मधाई ने कहा कि प्रभु, मुझे दंड कुछ आप जरूर दीजिए, मैंने अपराध किया है, अपराध करने का सोचना भी पाप है, मैं तो फिजिकली अपराध कर दिया, महापाप किया है, इसलिए आप मुझे दंड जरूर दीजिए। तो महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें दंड दे रहा हूं और तुम्हारे लिए दंड रहेगा कि वहां पर एक सुंदर गंगा के किनारे घाट बनाओ, जिससे भक्त लोग आकर के अच्छा तरह से स्नान कर सके। तब मधाई का दिल थोड़ा ठंडा हुआ और मधाई जाकर के एक बहुत सुंदर घाट बनाया गंगा के नगर। आज भी वह घाट है जिसका नाम है मधाई घाट, हजारों लोग स्नान करते हैं। इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु जगाई और मधाई का उद्धार किए, वे लोग भक्त बन गए। जब इन लोगों का देहांत हुआ तो जमराज जी चित्रगुप्त को बुलाए, और कहा भाई देखो चित्रगुप्त, देखो कितना पाप किए हैं। चित्रगुप्त उनका पोथी उतारे निकाले, कहे कि मत पूछिए, ये लोग एक महीना में जितना पाप करते थे, नहीं 1000 वर्ष में, एक महीना में इनके द्वारा किया गया पाप मैं 1000 वर्ष में भी नहीं लिख सकता था, इतना ये लोग पाप करते थे। एक महीना में इतना पाप करते थे कि 1000 वर्ष लग सकता था चित्रगुप्त को लिखने के लिए। इसलिए कहा कि मैं थक गया, मैं लिखना बंद कर दिया इन लोगों का पाप सब, ये पापी ही है ऊपर से नीचे तक। लेकिन लेकिन एक करिश्मा हुआ और पूरा जगाई मधाई के उद्धार का लीला चित्रगुप्त जी सुना पड़े। जे वही सुनाए जमराज जी मूर्छित हो गए और जमराज जी भागते भागते आए। सब देख रहे हैं जमराज कहां जा रहा है काम धंधा छोड़ करके। ब्रह्मा जी भी आ गए, शिव जी आ गए, नारद जी आ गए और सब लोग आकर के चैतन्य महाप्रभु के नाम संकीर्तन में नाचने और गाने लगे। ऑल ग्लोरी टू जगाई एंड मधाई। तो जगाई मधाई के कृपा से ये लोग भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के इस लीला का रहस्वादन, रास लीला का, नाम रास लीला का रहस्वादन कर पाए। तो चैतन्य मंगल में, चैतन्य भागवत में इस कथा को अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। तो मैं यह जो जगाई मधाई कथा है, इस कथा से कई एक चीज सीखने को मिलता है। यदि हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो भूल करके भी, स्वप्न में भी वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। यदि वैष्णव अपराध हो गया तो भगवान चैतन्य महाप्रभु सब कुछ दे देंगे लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं देंगे। बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तबहुना पावे कृष्ण पदे प्रेम धान। कृष्ण नाम ले सकते हो लेकिन कृष्ण प्रेम महाप्रभु नहीं देंगे, क्योंकि कृष्ण प्रेम को देने वाले हैं। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी कौरतुसी नमः। कृष्ण प्रेम को देने वाले भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके पास ही चाबी है। जो अपराध करेगा, जो वैष्णव अपराध करेगा उसे नहीं मिलेगा। महाप्रभु रूप गोस्वामी से को शिक्षा देते कहते हैं कि ब्रह्मंड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज माली हया कर से बीज आरोपण श्रवण कीर्तन जले करो ये सिंचन। और उसका सिंचन करते करते कहते हैं कि ये जो वैष्णव अपराध है, कहते हैं हाथी माता मैड एलिफेंट, वैष्णव अपराध मैड एलिफेंट के समान है। इसलिए वैष्णव अपराध से हमें हमेशा बचना चाहिए। देख सकते हैं जगाई और मधाई, जो जगाई वैष्णव अपराध नहीं किया, वैष्णव सेवा किया उसको तुरंत प्रेम मिल गया, और जो वैष्णव अपराध किया वो तब तक से प्रेम प्राप्त नहीं हुआ जब तक से नित्यानंद प्रभु से क्षमा नहीं किए। इसलिए कृष्ण प्रेम प्राप्त जो करना चाहता है उसे चाहिए कि वैष्णव सेवा करें, वैष्णव अपराध न करें। और भगवान चैतन्य महाप्रभु कृपा से जगाई और मधाई का उद्धार ही नहीं हुआ बल्कि ऐसे शुद्ध वैष्णवों के कृपा से भगवान चैतन्य महाप्रभु का लीला सुनने को मिला, और जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मा शिव नारद इत्यादि को भी शुभ अवसर मिला कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के इस नाम संकीर्तन के रास डांस में वे लोग भी भाग ले सके। तो वैष्णव सेवा बहुत महान है। तो आज के प्रवचन का सार यही है कि निरपराध होकर के हम लोग वैष्णव सेवा कर, अपराध शून्य है या करो ये भजन दयाल निताई चैतन्य बोलो नाच रे अमार मन। मन तब प्रसन्न होगा, मन तब नाचेगा जब हम अपराध शून्य होकर के भजन करेंगे। किसी प्रकार का चाहे नामापराध हो चाहे वैष्णव अपराध हो। नामापराध तो खत्म हो सकता है नाम लेकर के, लेकिन वैष्णव अपराध बहुत ही गर्हित है, बहुत गर्हित है। भजन है ना, हाँ हरि तुआ पदे अपराध तार हरि नाम, वैष्णव पदे अपराध नाही कोनो त्राण। हे प्रभु हरि पदे अपराध तार हरि नाम, यदि भगवान के चरणों में कोई अपराध करता है तो हरिनाम के द्वारा अपराध खत्म हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, तुआ पदे अपराध नाही कोनो त्राण। लेकिन हे वैष्णव ठाकुर, आपके चरणों में यदि कोई अपराध करता है तो कोई उसका कल्याण नहीं है। तो इसलिए हमें सब प्रकार से वैष्णव अपराध से बचते हुए भजन करना चाहिए, तब भजन आगे बढ़ेगा, भजन में आगे बढ़ेंगे, मन प्रसन्नचित रहेगा और कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? माइक कहाँ है? माइक में बोलिए।
राजा बलि को क्या श्राप मिला था? बोलिए।
शुक्राचार्य जी श्राप दिए थे ना, उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, तू अपने को बहुत बड़ा मानता है, दो पग में सब कुछ ले लेगा, तीसरा पग कहां देगा है? तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। क्या ठीक है, स्वीकार करता हूं। तो भगवान ने कहा भाई मैं कुछ तुमको नरक नहीं भेज रहा हूं, तुम्हारे गुरु जी श्राप दिया तो हमारा काम है उसका आज्ञा पालन करना, इसलिए तो नरक भेज रहा हूं। तो बलि महाराज को जाना पड़ा नीचे, शुक्राचार्य का श्राप था। और कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण।
माइक इज राइट।
हरे कृष्ण। नाम अपराध में जो आता है, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम का उपदेश करना, और अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम का उपदेश करना जो नाम अपराध में आता है, तो यानी जिसको जो अश्रद्धालु रहेगा उसको हरिनाम का उपदेश नहीं करने का?
बिल्कुल नहीं।
तो फिर
उसको भक्त बनाने के अलग तरीके है ना, नाम मत दो उसको, दोस्त बन जाए उसका, दोस्त बन सकते हो ना, पैसा नहीं लगता उसमें तो, कैसे है भाई ठीक है ना, हाल चाल ठीक है ना, परिवार में कितने लोग हैं, दोस्त बन जाओ, संबंध अविधेय और प्रयोजन, प्रयोजन है उसको हरि नाम देना, पहले संबंध स्थापित करो, दोस्ती कर लो, तब वो कहेगा अरे यार तू क्या, तू हरे कृष्ण बोलता है, हरे कृष्ण ही बोलता है, तुम चलो मजा मारो, क्या मजा, वैसे मजा आता है यार, चलो तुम ही बोलो ना है? तो यार यार कहते कहते हो जाएगा कल्याण उसका, पहले दोस्ती कर लो।
हरे कृष्ण भाई, हम देखते हैं कि कोई भक्त लोग थोड़ा सा चीजें हो जाती है,
नहीं तो और नहीं तो थोड़ा प्रसाद दिया करो डेली, ये टॉनिक है, काम करेगा, उसको प्रसाद देगा तो उसका मन शुद्ध हो जाएगा, तब नाम लेगा, दोस्त बनो, प्रसाद खिलाओ, बाद में नाम।
तो भक्त लोग भी थोड़ा सा कोई बात हो जाता है तो बात करना बंद कर देते हैं एक दूसरे से, कोई हो जाता है तो इसका कैसे सावधान होना चाहिए? जो थोड़ा
बात करना बंद कर देना अच्छा ही होता है, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण के विषय में बात करो, वो बात सही है, लेकिन ये बात करना कि उसको ज्यादा मेंटेनेंस मिलता है, मुझे कम मिलता है, उसको ये होता है, उनको ये होता है, ये बात करना बंद करो अच्छा ही होता है।
तो कोई लड़ाई झगड़ा जैसे होता है फिर आपस में बात भी नहीं करते कितने सालों तक?
प्रभु
हम लोग अपराध हो जाता है,
हम लोग अभी भक्त नहीं है, हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, पहला नंबर। भक्तों में लड़ाई नहीं होता है ये कभी मत बोलना, जो भक्त हो गया उसमें लड़ाई नहीं होता है, लड़ाई तो उसमें होता है जब अभी नवसिखुआ है, भक्त बनने का प्रयास कर रहा है। कोई स्थान ऐसा है जहां लड़ाई ना होती हो बताओ तो? तुम्हारे घर में कौन कौन लोग हैं बताओ, कौन कौन तुम्हारे घर में बताओ, माइक पे बताओ, सब सुनेंगे।
गोपाल हरि, गोपी प्रिया और विष्णु हरि, ये तीनों आपस में लड़ते रहते हैं मतलब।
और तो अपने पत्नी का नाम भूल गया
वो तो
जो जिसकी जननी है उसका नाम भूल गया। अरे तुम्हारे परिवार तुम्हारी पत्नी है, तीन बच्चे हैं, तुम पांच लोग है ना, लड़ाई कभी होती है कि नहीं?
होता है।
लो ये तो तुम्हारे अपने हैं ना,
प्रेम से होता मतलब,
तुम्हारे अपने हैं ना, अरे अपने लोग भी लड़ाई करते हैं, बाहर तो दूर का रहा, संसार में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां लड़ाई ना होती हो। एक बार एक भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा, कि प्रभुपाद जी मंदिर में आजकल बहुत झगड़ा होता रहता है। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है तुम बताओ कोई ऐसा जगह जहां झगड़ा ना होता हो और हम सब लोग वहीं चलेंगे, हम सब लोग वहीं चलेंगे। तो भक्त बड़ा सोचा कि क्या कहूं, प्रभुपाद तो हम काट दिए। तो भक्त कहता है प्रभुपाद बैकुंठ भगवान का धाम है, यह झगड़ा नहीं होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं हम तो वही काम कर रहे हैं ना बैकुंठ जाने का। हरे कृष्ण भजन करो झगड़ा नहीं होगा, भक्ति करने से झगड़ा नहीं होगा। भक्ति किसे कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मात् अनावृत अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्ति उत्तमा सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता तत्परेण निर्मलम हसी के सी केण सेवनम भक्ति रुच्यते। सुनो सुनो मैं बोल रहा हूं सुनता नहीं, सुनो। सभी इंद्रियों को कृष्ण के सेवा में लगाएंगे तो झगड़ा नहीं होगा, मनमुटाव नहीं होगा। मैं केवल सिद्धांत बता रहा हूं, प्रैक्टिकल दूसरा बात है। मैं भी झगड़ा कर लेता हूं, ऐसे बात में झगड़ा नहीं करता हूं, लेकिन सत्य यही है कि हम लोग भक्त नहीं बने हैं, भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। जो भक्त बन जाएगा झगड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो ये मत बनो समझो कि मैं भक्त बन गया तो पता के जने पहन करके मतलब मैं ब्राह्मण हो गया हूं। ब्राह्मण के गुण प्राप्त करना पड़ेगा, भक्त के गुण प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है।
यस हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने अभी बताया कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है और हम भी भगवान स्वीकार करते
हैं। हमने बताया नहीं, शास्त्र बताता है, सब कहते हैं।
प्रभुपाद जी भी यही चीज बोले, लेकिन कभी कभी कुछ भक्त लोग ऐसे बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं और सन्यासी के जैसा उनका वेश होना चाहिए। तो नाइट में आप देखिए कभी कभी तो चैतन्य महाप्रभु को हाथ में बंगड़ी ये सब नहीं देते हैं, बोलते हैं वो सन्यासी है। ऐसा क्यों, जब हम भगवान स्वीकार किए हैं तो उस रूप में होना चाहिए, और जब सन्यासी रूप में देखते हैं तो हम प्रभुपाद जी सरस्वती महाराज के रूप में देखना चाहिए।
प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का जो हम अर्चा विग्रह का पूजा करते हैं वो बैकुंठ भाव में करते हैं। राधा रानी के साथ में कृष्ण कभी मुकुट नहीं पहने थे, पहने थे कभी नहीं ना, ऐश्वर्य भाव नहीं था, वो तो लंगोटी पहने थे, गमछा लिए थे, डंडा लगा चराने आते थे, यही करते थे ना ब्रज में। आप ऐसा ड्रेसिंग करते हो कभी नहीं, किस भाव में करते हो, वैकुंठ भाव में, लक्ष्मी नारायण के भाव में। वैसे चैतन्य महाप्रभु का जो वर्शिप है वो वैकुंठ भाव में है, यानी ऐश्वर्यमयी भाव में है, ईश्वर्यमयी भाव में, तम उसी रूप में करते हैं। कुछ समय भक्त लोग चेतन महाप्रभु को वो सन्यासी दंडा के रूप में कहीं ड्रेसिंग करना शुरू कर दिए थे, प्रभुपाद जी बड़े नाराज थे उसको सुन करके। प्रभुपाद जी वो स्वीकार नहीं करते हैं।
लेकिन यहाँ पे शाम को जो है फिर उस भाव में नहीं करते हैं ना, कभी आप देखिए चेतन महाप्रभु को यहाँ पहनाते हैं तो नाभि भी दिखता रहता है, ये सब अच्छा नहीं लगता है ना।
वो आपका मैनेजमेंट है, उसे मुझे कुछ नहीं लगता है। भाव क्या है वो देखना चाहिए, भाव है वैकुंठ भाव, ईश्वर्यमयी भाव, ईश्वर्यमयी भाव में चेतन महाप्रभु का हम पूजा करते हैं। आप लोग माइक बंद मत करो, जो लिया है वैसे ही किया करो। हाँ चलो बोलो।
मेरा प्रश्न है प्रभु जी कि प्रचार की बात जो चल रही है तो प्रचार में वाणी प्रचार से अधिक महत्वपूर्ण अपने आचरण प्रचार है, आचरण प्रचार लेना। कि अगर मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि जो व्यक्ति के आचरण से ही लोग देख के सीखते हैं, और हम अपने आचार्यों से और सीनियर से भी यही आचरण से ही देख के सीखते हैं। मैंने बहुत बार ये नोट किया है, मैं जहाँ काम करता हूँ वहां पे भी हमारे एक दो सीनियर डिवोटी लोग भी हैं और यहाँ भी, तो उनके आचरण की वजह से लोग जो है भक्त नहीं बन पाते हैं और हमें ब्लेम करते हैं।
वैष्णव एरो क्रिया मुद्रा विघ्न आ जानी बे, वैष्णव के क्रिया मुद्रा को बड़े बड़े लोग नहीं जानते हैं। तो वैष्णव को बाहर से मत देखो, कैसा व्यवहार करता है, कैसा पहनता है, कैसा खाता है। दादा पंडित
पुंडरीक विद्यानिधि को बाहर से देखे, अरे तो एकदम राजा के समान रह रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। बाहर से देख करके वैष्णव को नहीं पहचान सकते हो। वैष्णव का पहचान जो है और निश उसके नाम, उसके मुख से कृष्ण का नाम आता हो, उसका प्रचार का असर पड़ता हो। नित्यानंद प्रभु तो शराब खाने में घुस जाते थे कभी कभी प्रचार करने के लिए, और थोड़े शराबी हुए हैं। तो इसलिए बाह्य वेशभूषा से वैष्णव का पहचान नहीं हो सकता, वैष्णव का पहचान उसके वैष्णवता से होगा। और इसका जो प्रभाव है, जो जितना मात्रा में शुद्ध रहेगा उतना मात्रा में प्रभाव पड़ेगा। कोई यदि 1% शुद्ध है, प्रचार करना सबका धर्म है, चाहे परमहंस हो चाहे नया भक्त हो। परमहंस बैठ करके ही प्रचार करता है, बैठे बैठे लोग प्रचार, वहीं से बैठे नहीं से प्रचार कर सकता है। नया भक्त जाएगा लोगों को बताएगा कृष्ण के विषय में। तो जितना मात्रा में शुद्ध रहेगा उतना ही मात्रा में असर पड़ेगा। कृष्ण शक्ति बिना नाय तार प्रवर्तन, जितना शक्ति है उतना ही प्रचार कर सकता है। इसलिए प्रचार सर्व करना चाहिए, ये मत सोचना रे रे अरे पहले तो अपने को सिद्ध करें तब जाए प्रचार करें। नो, गो आउट एंड प्रीच, जाओ प्रचार करो, फल का चिंता मत करो। कर्मणैव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अपना कर्म करो। गुरु कृष्ण चेतन महाप्रभु ने कहा जाओ प्रचार करो, जाओ प्रचार करो, और जितना मात्रा में शुद्धि है उतना असर पड़ेगा। अपने को शुद्ध करने का प्रयास करो और ये प्रचार करने से शुद्ध होगे। गुरु कृष्ण का आज्ञा पालन कर रहे हो, प्रचार नहीं रुकना चाहिए किसी भी कंडीशन में, प्रचार होना चाहिए।
एक बात और थी कि हम प्रचार करते हैं नए लोगों को कि आप कृष्ण से जुड़ने का प्रयास करिए, और बताते हैं हमारे इस्कॉन के बारे में, हमारी फिलोसॉफी के बारे में। और ऐसे भक्तों, कई ऐसे भक्त हैं जिनको देखने से वो बिगड़ जाते हैं, वो बोलते हैं आपके भक्त ऐसा करते हैं ये करते हैं, तो उनको हम किस तरह समझा सकते हैं, क्योंकि वहां तो कुप्रचार हो जाता है प्रचार के बदले।
पहला नंबर ये मानना पड़ेगा कि सबके हृदय में भगवान है। आपके हृदय में भगवान है, जिसको प्रचार कर रहे हो आप उसके हृदय में भगवान है, और जो साधु होकर के असाधु का व्यवहार कर रहा है उसके हृदय में भगवान है, ठीक है ना। तो भगवान कभी भी टेस्ट भी करते हैं आपके प्रचार का, कि आपका प्रचार कैसा है, और जिसको प्रचार कर रहे हो उसको भी टेस्ट करते हैं। इसलिए दूसरे भक्त को भेज देते हैं कि गड़बड़ करने के लिए, ये सब भगवान ही खेला कर रहे हैं तीनों के हृदय में। भगवान को हम नकार, उधर उनका प्रश्न है, उधर भगवान को हम नकार नहीं सकते हैं। लास्ट में उधर भगवान को समझने का, भगवान है वहां पर, लेकिन इसे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उत्साह निश्चयाधौर्या तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागो श्रोवृत्ति षडविर भक्ति प्रसिद्धति, उत्साह रखना चाहिए। नित्यानंद हरिदास हतोत्साहित नहीं, उत्साहित रहे।
हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु। आपने जैसे अभी कहा कि अगर भगवान के प्रति अपराध करते हैं तो हरि नाम से उसका निगेशन हो सकता है, मतलब बच सकते हैं, लेकिन वैष्णव अपराध करने वाले को अनलेस एंड अंटिल वो वैष्णव के दंडवत करके उससे माफी मांगे तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर समझो किसी ने वैष्णव अपराध कर दिया हो और वैष्णव के प्रति उसने माफी भी मांगी है और भगवान से भी माफी मांगी और वो वैष्णव उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या उसके लिए कोई रास्ता नहीं है?
आपने अपना काम कर दिया, अब भगवान पर छोड़ दो, लेकिन वो माफी होना चाहिए फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट, नॉट सो अप, नॉट किसी ने बोल दिया जब माफ, हाँ महाराज ने बोल दिया था, प्रभु जी सॉरी महाराज ने बोल दिया इसलिए, महाराज ने बोल दिया या प्रभु जी ने बोल दिया इसलिए सॉरी, नहीं। आपके हृदय में क्या हो रहा है, यदि आप कन्विंस हो, रियलाइजेशन, रिपेंटेशन, रेक्टिफिकेशन, रीयूनिफिकेशन, पहले रियलाइज किया कि हाँ मैंने गलती कर दिया, रिपेंट करो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, रेक्टिफाई करो, जाकर के अपराध को स्वीकार करो और क्षमा मांगो, और भगवान उसके भी हृदय में है, जैसे आपके हृदय में है, भगवान देखते हैं। और नहीं तो अल्टीमेटली छोड़ दो, यदि वो फॉल्स ईगो पर छोड़ दो, भगवान देखते हैं ना, या टेंशन, अपना भजन करते रहो बस।
धन्यवाद।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा,
दंडवत प्रणाम प्रभु।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम नहीं, दंडवत मतलब ठीक है, बोलो। हरे कृष्ण, ठीक है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारा ये सवाल है कि हम नए भक्त बनने के राह पे जो
दंडवत कहा नहीं जाता है, किया जाता है।
यस सॉरी बोलो प्रभु जी, हम भक्त के बनने के राह पर हम चल रहे हैं, बट कभी कभी अनजाने में अगर हमसे वैष्णव अपराध हो जाता है जिसका हमें भी ख्याल नहीं होता, और कभी कभी वैष्णव बताते भी नहीं कि हमारी गलती हो गई है, तो उस अपराध से फिर हम कैसे बच सकते हैं?
एक बार रूप गोस्वामी बैठे हुए थे और वे राधा कृष्ण के लीला का चिंतन कर रहे थे, तो कुछ मजाक हुआ, जैसे राधा रानी कृष्ण मजाक किया, राधा रानी बड़ी गुस्सा में आ गई और चल दी, तो रूप गोस्वामी हंसने लगे। उसी समय एक वैष्णव वहां से पार कर रहे थे जो अष्टवक्र जैसे थे, वक्र उनका टेढ़ा मेढ़ा हाथ पैर था चलने में, तो वैष्णव सोचा कि रूप गोस्वामी इतने महान वैष्णव हैं और मैं अपने कर्म के अनुसार मुझे यह शरीर मिला है, मुझको देखकर वे हंस रहे हैं। वो अपराध ले लिया, अपराध रूप गोस्वामी किए नहीं थे, उसने अपराध ले लिया, जिससे नेक्स्ट डे यदि वो चाहते थे देखना राधा कृष्ण लीला को, देख नहीं पाते थे। रूप गोस्वामी को बड़ा दुख हुआ, अंत हुए गए सनातन जी से पूछे, तो सनातन जी ने कहा कि ठीक है ऐसा करो फिश दो, और सभी ब्रज के वैष्णव को बुलाए, तो उन दिन तो गिने चुने वैष्णव थे, सबको बुलाए, सब आए लेकिन वो नहीं आया। प्रभु गोस्वामी समझ गए कि उसके चरणों में अपराध हुआ है और जाकर छावा, न अपराध नहीं किए थे लेकिन वो समझ गया था अपराध है, समझ गए ना, फिर भी रूप गोस्वामी का नम्रता देखो कि वे जाकर के क्षमा मांगे, और यहां तो अपराध करने की बात आप कह रहे हो, अपराध कर दिए तो अच्छा है क्षमा मांग लेना चाहिए।
नहीं, हमें पता नहीं होता है कि हमने अपराध कर दिया है, बट वो अपराध
तो पता लगाओ, रूप गोस्वामी पता लगाए,
हाँ वही पूछ रहा हूँ,
पता लगाओ किसकी चरण में अपराध किया हो, फीस दोगे तो बहुत भगत आ जाएंगे यहां पर खाने के, उन दिनों कम थे, तो अपने अपने फ्रेंड मंडली में पूछ लो भाई, देखो जो फ्रेंड होते हैं आपस में बात करते रहते हैं, तो कोई कहिए देगा कि देखो यार मैं कर रहा था वैसे बोल दिया, वो बात अपने आप आ जाएगी। जितना दिन नहीं जानते दो काम करो, एक तो पता लगाओ कि किसके चरण में अपराध किया हूं, और दूसरा से भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मुझे उस भक्त से मिला दीजिए जिसके चरण में अपराध किया है, भगवान आपके हृदय में सुपर सोल हैं, वो जरूर मिला देंगे, और क्षमा मांग लो क्लियर, भगवान भी माफ नहीं करेंगे, नहीं कि अपराध हो गया ना कोई बात नहीं, भगवान क्षमा करना मैं उनका अपराध झापड़ मार दिया हूं, भगवान माफ नहीं करेंगे, वही वैष्णव माफ करेगा। आप जानते हो कथा ना दुर्वासा मुनि का और अमृत महाराज का, सब जगह घूमकर भगवान का मैं माफ नहीं करूंगा, ब्रह्मा जी भी नहीं शिव जी नहीं कोई नहीं, वहीं पर आना पड़ा। तो एक तो आप ढूंढो और दूसरा भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे उस वैष्णव से मिला दो जिसके चरणों में जान कर अनजान में कैसे भी अपराध हो गया।
थैंक यू महाराज।
और कोई प्रश्न इधर? क्या बात है हरिदास, आज प्रश्न नहीं कर रहे हो तुम, खाली लग रहा है तुम्हारे बिना।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आप बोले जैसे महाप्रभु बोले कि जाके नगर में गांव में सब जगह जाके प्रचार कीजिए, तो लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर में प्रभुपाद को बोले आप पश्चात जगत में जाके प्रचार कीजिए, और प्रभुपाद भी बहुत सारे मंदिर बनाए लेकिन वो सभी शहर में ही बनाए, गांव में कहीं पे भी नहीं बनाए, तो इसका क्या मतलब?
नहीं मायापुर गांव है ना, मायापुर गांव है, अब भले बहुत सर्व है, वृंदावन गांव था प्रभुपाद जी बनाए मंदिर, तो हमें आज जब मैं ज्वाइन किया था 1977 में हम लोगों का मंदिर लास्ट मंदिर था, उधर कोई सनसेट के बाद कोई आता नहीं था, उधर गांव था, ऐसा बात नहीं प्रभुपाद जी गांव में नहीं बनाए, नहीं वृंदावन अमेरिका में पहाड़ में बनाए ऊपर, ऐसा बात नहीं बनाए, गांव में भी प्रभुपाद डिस्क्रिमिनेट नहीं किए, गांव में भी किए। ऑल राइट, हरिदास अच्छा, बिना हरिदास के पूरा नहीं होगा, समापन नहीं होगा। हाँ बोलो।
प्रश्न नंबर यह है कि जो प्रभुपाद महाराज जी मंदिर बनाया 108 मंदिर, अभी ज्यादा मंदिर हो गए ऑल वर्ल्ड में, मंदिर बने भक्त को उद्धार करने के लिए। जो पापी लोग आते मंदिर में आते भजन साधन कर रहे थे, धीरे 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 उद्धार हो जाते। ये काम है प्रभुपाद महाराज का। जैसा बोली महाराज गुरु शुक्राचार्य बल में बलवान हो गया, ऐसा हम प्रभुपाद महाराज से आशीर्वाद से हम सब भक्त यह सब बलवान है। कोई किसका पास अपराध किया तो वो इसे प्रभुपाद महाराज से उद्धार करेगा, ये तो हमारा कुछ ड्यूट नहीं ना। ये देखेगा, ये इसका काम है प्रभुपाद महाराज का। जैसे ये मंदिर बनाया ना,
हरिदास शॉर्टकट मारना चाहते हैं कि मंदिर वो बनाए, हम उनके मंदिर में रहते हैं, अपराध हुआ तो हम पर क्या, हम उनके भी आप में। वाह हरिदास बाबा, कर्म फल ऐसा नहीं होता है। एक ही मां के गर्भ से जन्मे दो बच्चे होंगे, दोनों बच्चों का अपना कर्म फल भोगना पड़ेगा। वो नहीं कह सकता है मां तूने जन्म दिया इसलिए तुम ही कल से भोगो, कर्म फल अपने को भोगना पड़ेगा।
ज्यादा तो कष्ट होगा मां को होगा ना, फिर पिताजी को होगा ना, दोनों को पहला को होगा।
होगा
हाँ,
वो होगा क्योंकि बेटा उसका अपराध किया है। वैसे हम लोग अपराध करते हैं, प्रभुपाद जी को बहुत दुख होता है कि हम लोग अपराध करते हैं, लेकिन जो अपराध का जो फल है वो उसी जीव को भोगना पड़ता है। सबको, सब व्यक्ति को अपना अपना कर्म फल भोगना पड़ता है, वहां शेयरिंग कोई नहीं कर सकता है। वाल्मीकि जी भगत इसलिए बन गए ना, नारद वाल्मीकि ने कहा मैं तो ये सब कर रहा हूं अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। नारद ने कहा जाकर पूछ कराओ भैया, तुम्हारे कर्म में भाग लें, क्यों नहीं भाग लेंगे, हम उनके लिए कर रहे हैं। जैसे आपने कहा ना प्रभुपाद को लेना चाहिए, जरूर लेंगे। वो गए सबने नाम बोल दिया, तो वाल्मीकि जी भगत बने ना। तो कर्म फल वही जाता है जो व्यक्ति किया होता है। All right. अरे दो और हो गया, एक उधर लास्ट में बाद में तीन, बस दिस इज लास्ट क्वेश्चन, नो मोर।
हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी आई कैन आस्क इन इंग्लिश,
कैन आस्क इन बंगाली, हिंदी, इंग्लिश।
सो जगन्नाथ टेम्पल इज वन ऑफ द फेमस टेम्पल इन इंडिया एंड ऑल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो व्हेन लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ही डिड हिज फर्स्ट टाइम इन जगन्नाथ टेम्पल, so one of the devotee is his name is Haridas Thakur, who was the greatest devotee of the Lord. So he couldn't enter into Jagannath temple. So being a devotee of the Lord, why he couldn't enter into the Jagannath temple, and why that time Lord Chaitanya Mahaprabhu he could sense these rules, but why he didn't take action in this connection? Hare Krishna.
Chaitanya Mahaprabhu, if you read Bhagavad Gita, Krishna says that people who are worshipping different demigod, it is not duty of a devotee to disturb somebody's faith. First thing. Secondly, Chaitanya Mahaprabhu jo system wahan par hai, wo system mein interfere nahi karna chahte the. Wo management mein nahi the. Management mein Chaitanya Mahaprabhu nahi the. Wo darshan karne ke sadhak the. वो कर बहुत सकते थे, लेकिन थे एक वैष्णव, वैष्णव के रूप में आए थे ना, तो वैष्णव को चाहिए कि एडिकेट को पालन करना। उन्होंने एडिकेट पालन किया, ये हाईएस्ट एडिकेट है। पत्नी को त्याग देना, बाप मां को त्याग देना बहुत बड़ा पाप है। पत्नी का रक्षा करना, बाप मां का रक्षा बेटा कम कर्म होता है, लेकिन महाप्रभु ने त्याग दिया। हाइएस्ट एडिकेट मेंटेन करने के लिए। उसी प्रकार से हरिदास ठाकुर से यह दिखलाना चाहते थे महाप्रभु कि जगन्नाथ मंदिर में जाकर के ही भक्ति नहीं हो सकती है, बाहर रह करके भी तुम भजन कर सकते हो, ये कोई जरूरत नहीं वहां पर जाने के। और चेतन महाप्रभु स्वयं सच्चा जगन्नाथ है एनीवे, हरिदास ठाकुर इस बात को समझते थे कि से कृष्ण से गौरव से जगन्नाथ है, वो सच्चा जगन्नाथ हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं था। चेतन महाप्रभु कोई तकलीफ नहीं था, जगन्नाथ कोई तकलीफ नहीं था, आपको क्यों तकलीफ हो गया? ना ना अभी उधर उधर दो दो प्रश्न था, हो गया अभी आपका टाइम खत्म हो गया। चेतन महाप्रभु शिक्षा दे रहे थे,
वैराग्य विद्या निज भक्त योग शिक्षार्थमेव, वो शिक्षा देने के लिए आए थे। और एक शिक्षा ये था कि लोक में जो एडिकेट है उसको तोड़ना नहीं चाहिए, पालन करना चाहिए।
हरे कृष्णा, एक समय अमोघा प्रभु अमेरिकन प्रभुपाद,
एक सेकंड हाँ। जैसे यहां पर पहले नियम था कि नो मंगला आरती नो प्रसाद, जो मंगला आरती नहीं आएगा वो प्रसाद नहीं मुझको मिलेगा। तो कोई कह रहे आप तो फूड फॉर लाइफ कर सब खिलाते हो, वो आपका भगत है उन्हें क्यों नहीं खिलाते हो? क्योंकि मंदिर का एक नियम है कि जो मंगला आरती नहीं आएगा उसे प्रसाद नहीं मिलेगा, तो नियम को तोड़ना नहीं चाहिए।
हरे कृष्णा, एक कमेंट है, अमोघा प्रभु जो कि प्रभात के शिष्य है और इस मंदिर में एक समय हिंदू भक्त डायरेक्टर थे, वो प्रवचन दिए थे, वो बताए थे कि सत्ययुग में एक एक स्थान पर एक ग्रह पर देवता रहते थे और एक ग्रह पर राक्षस रहते थे, स्वर्ग में देवता पाताल में राक्षस। तो एक व्यक्ति के दोष के लिए पूरे ग्रह को दंड मिलता था, जैसे एक हिरण्यकश्यप के लिए कई राक्षस मारे गए। और इसके बाद में त्रेता युग में एक नगर में राक्षस रहते थे, एक में देवता, अयोध्या में श्रीराम रहे और लंका में रावण रहा, तो एक के लिए पूरे नगर को दंड मिलता था। इसके बाद में आगे चलकर द्वापर में और कलयुग के शुरू में फिर एक दुर्योधन दुष्ट था, इसके कारण उसका पूरा परिवार के लिए दंड मिला, इसके 100 भाई मारे गए। और इस कलयुग में उन्होंने बताया एक ही शरीर के अंदर कभी कभी दैवी प्रवृत्ति रहती है, कभी आसुर प्रवृत्ति निवास करते हैं। अब आसुर प्रवृत्ति में रहते हैं तो भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, खराब काम करते हैं, दैवी प्रवृत्ति में है तो अच्छा कार्य करते हैं, भगवत सेवा करते हैं। तो उन्होंने कहा इस समय ऐसा है जो व्यक्ति कर्म करता है उसी को दंड मिलता है।
थैंक यू, वेरी गुड।
हरे कृष्ण,
आपके पीछे।
सर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी तो हम हरे कृष्णा हरे रामा करके ईश्वर को पुकारते हैं, लेकिन जब ये शब्द श्रृंखला नहीं बनी थी तो कैसे ईश्वर को पुकारा जाता था?
अलग अलग युगों में अलग अलग तरीके हैं भगवत स्मृति के। सतयुग में लोग तपस्या करते थे, त्रेता में यज्ञ करते थे, कलयुग में घर घर में शालिग्राम की पूजा होती थी, लेकिन कलयुग में कलौ तद हरि कृत नहीं कल कर्म धर्म विवेको राम नाम अवलंबने को। हम लोगों की स्मृति शक्ति बड़ी कम है, पहले स्मृति शक्ति बहुत ज्यादा थी। सतयुग में कभी कोई भूलता ही नहीं था भगवान को, असुर भी नहीं भूलते थे और देवता भी नहीं। त्रेता में निरंतर भगवान को प्रसन्न करने में लगे रहते थे, द्वापर में भगवान का दर्शन, भगवान का पूजा, भगवान का सेवा कर करके मन लगाते थे, लेकिन कलयुग में वो नाम लेने से, नाम लेते 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 वो मन में आ जाता है और इस प्रकार से उसका चिंतन हमेशा होता रहता है। इसलिए कलयुग में नाम संकीर्तन जो है वो स्मरण करने का अच्छा तरीका है, योग से नहीं, तपस्या से नहीं, पूजा से नहीं, इन नाम के द्वारा।
सर मेरा प्रश्न आप समझे नहीं शायद, मैंने ये कहा कि जब शब्द उत्पत्ति नहीं हुई थी, द्वापर युग में भी शब्द थे, त्रेता युग में भी शब्द थे और सतयुग में भी शब्द थे, इसी के कारण हम जानते हैं कि द्वापर में कृष्ण हुए या त्रेता में राम हुए। मेरा प्रश्न आपसे यह था कि जब था ही नहीं, शब्द ही नहीं था, देन कैसे आप?
शब्द इटर्नल है, ऐसा पता नहीं शब्द नहीं था। सब देखो, प्रकृति के क्रिएशन में 5 चीज हैं, पृथ्वी, उसके बाद पृथ्वी, आग, जल, हवा और आकाश। जब आकाश है इसका मतलब शब्द है, आकाश शब्द का ही बोधक है। मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, आकाश पे चलते टेलीफोन में कंजेशन हो जाता है, आकाश में जाम हो जाता है, शब्द जो है आकाश में है। सतयुग में आकाश बहुत क्लीन था
और ऐसा शब्द था, ऐसा शब्द था कि यहां पर कोई बोले भगवान वैकुंठ में सुन लेते थे। त्रेता में भी था, भगवान राम जंगल में सीता के लिए दुख अनुभव कर रहे थे, कौशल्या जी जान जाती थी वहां पर। तो आज भी शब्द है, आज लोग कहते हैं इंट्यूशन उसे कह देते हैं, लेकिन शब्द क्रिएशन से ही था। क्रिएशन का एक क्रिएशन में 24 तत्व हैं, जिसमें से 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियों का विषय, जैसे आंख का विषय है दृश्य, कान का विषय है शब्द। तो शब्द शुरू से ही है, ये वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएशन, विदाउट शब्द देयर कैनॉट बी क्रिएशन। शब्द था, अंतर इतना ही था। अरे सज्जू तरह छोड़ो ना, अभी का देखो, आज से 30 साल पहले जब मोबाइल फोन नहीं थे तब शब्द का प्रभाव देखो। एक व्यक्ति कुछ बोल देता था उसका असर पड़ता था। आज शब्द इतना हो गया है कि शब्द बोलने पर भी समझ नहीं आता है। बाप कहता है बेटा मत करो, बेटा जरूर करेगा। पहले बाप न कहे दूसरा बोल दे तुम्हारे पिताजी ऐसा बोल रहे थे, दशरथ जी राम को नहीं बोले थे तुम जंगल में जाओ, वो सुने थे, कह कही बताई थी। शब्द प्रमाण है सब चीज का। जब सृष्टि हुआ था हम जन्म लिए, हमारे पिताजी ये हैं, कहां से प्राप्त हुआ? शब्द से। शब्द सृष्टि से ही था। फाइनेस्ट प्रूफ यदि कुछ है तो वह है शब्द, जिसे शब्द प्रमाण कहते हैं। शब्द जी फ्रॉम वेरी बिगनिंग। ऑल राइट, सो वी स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।